सालव प्रधान था। चैद्य पक्षगान शिशुपाल के पक्ष में आए हुए। पश्यतां सर्वलोकानां सब लोगों के देखते देखते। तार्क्ष पुत्र कश्यप जी के पुत्र श्री गरुण जी सुधाम अमृत को किवा जैसे। हिंदी बोले भगवान गोविंद भी महाराज भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किए। स्वयंवर में समस्त लोगों के सामने देखते देखते उन्होंने उसी प्रकार रुक्मिणी का अपहरण किया जैसे गरुण जी ने बलात् देवताओं के समाज से अमृत का हरण किया था। उस स्वयंवर में शिशुपाल के पक्ष से आए हुए सालवादि राजाओं को भगवान श्री कृष्ण ने बुरी तरह से परास्त कर दिया। इसके पूर्व इसी अध्याय में यह कथा है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मथुरावासियों को द्वारका पहुंचा दिए। एक रात्रि में ही क्षण भर में भगवान के संकल्प से द्वारका नगर का निर्माण हो गया और सब लोग पहुंचा भी दिए गए योग माया द्वारा। और अंत में श्री कृष्ण और बलराम युद्ध छोड़ दिए, युद्ध में भयभीत होने की लीला की अभिनय किए, जरा संध के भय से भाग गए, भयभीत होने की लीला किए और एक पर्वत में प्रविष्ट हो गए। बाद में जरा संध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगाया कि दोनों इसी में जल करके मर जाएंगे। जो पर्वत के चारों तरफ पर्वत के चरण जल रहे थे, कृष्ण बलराम वहीं से उस प्रवर्षण गिरी से कूद करके द्वारका पहुंच गए। वो बहुत दूर है प्रवर्षण गिरी, लेकिन भगवान के लिए इस तरह से कूदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एक पग से पूरा पाताल तक नाप सकते हैं, दूसरे से स्वर्ग तक, उनके लिए एक पर्वत से कूद करके द्वारका पहुंच जाना कौन बड़ी बात है। इधर जरासंध ने यह प्रचार चालू किया कि कृष्ण बलराम जलकर खत्म हो गए। वो तो देखा नहीं कि वो द्वारका पहुंच गए हैं। यही प्रचार किया और बहुत खुश था कि मैंने अपने दामाद की मृत्यु का बदला चुका लिया, कंस के मृत्यु का बदला चुका लिया। कृष्ण बलराम तो जल ही गए, उसकी मान्यता थी, और मथुरा पर अधिकार कर लिया। भगवान को अपनी जन्मभूमि छोड़ करके भागना पड़ा। यह बहुत बड़ी सफलता थी जरासंध की, पर सब कुछ मिथ्या था। वो भगवान क्यों जलने जाए मरने जाए। तो द्वारका पहुंच गए। द्वारका में पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण की और श्री बलराम जी की जो सर्वप्रथम लीलाएं हुई, उनमें से यह विवाह की लीला सबसे पहले। तो श्री बलराम जी के विवाह की कथा कह रहे हैं। बड़े भाई हैं इसलिए पहले उनके विवाह की कथा होनी चाहिए। एक श्लोक में कहे, आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद् बलायेति पुरोदितम्। अनर्त देश के अधिपति श्रीमान रैवत थे, राजा उनकी रेवती नाम की एक बहुत ही सुंदरी कन्या थी। ब्रह्मा जी के कहने से, ब्रह्मा जी के निर्देशन अनुसार उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री बलराम जी से किया। इति पूरा उदितम, यह नवम स्कंध में कथा हो उदितम कथितम कही जा चुकी है। श्री सुखदेव गोस्वामी यह बात कहते समय कहते हैं ये कथा मैं कह चुका हूं नवम स्कंध में। महाराज रईवत अपनी पुत्री रेवती के लिए वर कौन है पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ही लिखते हैं कि किस कन्या का किस वर के साथ विवाह होगा, मनुष्य का लिखा हुआ नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य बात है, जो ब्रह्मा जी लिखते हैं वही होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लोक में जैसी भावी होती है वैसा होता है। तो ब्रह्मा जी ने किसको लिखा है किसके लिए, ये ब्राह्मण लोग पंचांग आदि देख करके बताते हैं लक्षण। लेकिन महाराज रईवत ने सोचा कि मैं साक्षात ब्रह्मा जी से ही क्यों न पूछ लू कि किसको लिखे। तो कुछ वर थे उस समय विद्यमान जो उनके मन में थे, बड़े सुंदर राजा, तो उनको मन में रख करके वे गए किसी किसी को कि उनमें से किसको ब्रह्मा जी लिखे हैं ये वो नहीं जानते थे। अतः ब्रह्मा जी से गए पूछने के लिए। तो ब्रह्मा जी उस समय भगवान के भजन में थे, संगीत चल रहा था, भजन चल रहा था। ब्रह्मा जी के लोक में तो सदा कीर्तन ही चलता रहता है, कथा चलती रहती है। तो वे थे उस कार्य में, तब तक इनको अवसर नहीं मिल पाया महाराज रईवत को पूछने का। वे बैठे रहे, वहां के अनुसार आधा घंटा या 45 मिनट बीता होगा उधर के अनुसार। इसके बाद ब्रह्मा जी को फुर्सत मिली तो उन्होंने स्वागत किया और पूछा महाराज कैसे आए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री के वर के लिए आपसे पूछने आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपके मन में कोई लड़का है जिसके लिए आपने सोचा। तो हाँ यहाँ यहाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो ये सब काल के गाल में चले गए, आपको बहुत समय बीत गया पृथ्वी छोड़े हुए, अब आप जाइए आपकी पुत्री के लिए सबसे योग्य सबसे सुंदर वर भगवान है, भगवान का अवतार होने वाला है। उन्होंने कहा आप शीघ्र जाइए, उनका नाम होगा बल या बलराम, उनके साथ विवाह कीजिए। तो महाराज रईवत आए और अपनी पुत्री का विवाह श्री बलराम जी से किए। यह द्वारका आने के बाद की घटना है। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि गोविंद, अब भगवान भी उपये में विवाह किए। अपि शब्द इस बात को कह रहे हैं जैसे श्री बलराम जी ने विवाह किया उसी तरह से श्री भगवान ने विवाह किया, लेकिन अपि शब्द बहुत भारी विशेषता को व्यक्त कर रहा है। बलराम जी ने तो केवल एक दो विवाह किया, लेकिन भगवान ने तो बहुत विवाह किया। श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा कई अध्यायों में भागवत में दी गई है और भगवान के बहुत से ऐसे विवाह हुए जिनमें बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हुए, प्रायः सब में युद्ध हुआ। हम तो देखते हैं केवल एक कालिंदी को छोड़कर बाकी सब में कुछ न कुछ युद्ध हुआ है। भगवान अपि, श्री भगवान भी विवाह किए उपये में, उपये में का अर्थ है विवाहितवान, विवाह किए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी यह शब्द क्यों कह रहे हैं कि भगवान गोविंद भी विवाह किए। भगवान अपि, भगवान से तात्पर्य उनका है कि भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, उन्हें किसी भी बाह्य वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है, वे आत्मा राम है, पूर्ण काम है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे कोई पुरुष इस जगत में विवाह करता है कुछ अभाव का अनुभव करके, कुछ वह सुख चाहता है, सेवा चाहता है किसी से, इसलिए अपने अभाव की पूर्ति के लिए वो विवाह करता है। यह संसार के विवाह का नियम है। परंतु भगवान जो विवाह किए उसमें भगवान का कोई अपना स्वार्थ या उनकी सुख की इच्छा नहीं थी कुछ, वो तो प्रेम को पोषण करने के लिए, पुष्ट करने के लिए भगवान ने विवाह किया। अपि शब्द अन्य समस्त लोगों से भगवान का पार्थक्य सूचित कर रहा है। किसी भी लीला में जो सब तरह से परिपूर्ण है, छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, वे प्रभु भी विवाह किए। तो अपनी ही नित्य प्रिया जो विदर्भ देश में जन्म ली थी उसके साथ भगवान ने विवाह किया। जो नित्य प्रिया है भगवान की ही है तो फिर उससे विवाह क्या करना है, लेकिन यह भगवान की लीला है। गोविंद शब्द के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लिए हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो गाम विंदति थी गोविंद, जो गाम पृथ्वी को व्याप्त करे, अर्थात पृथ्वी को सुख दे, पृथ्वी की पीड़ा दूर करे, उनको गोविंद कहा गया। गाम के कई अर्थ होते हैं, गो के कई अर्थ होते हैं। गोविंद का अर्थ होता है गौओं का पालन करने वाले, गौओं की सेवा करने वाले। गोविंद का अर्थ होता है इंद्रियों को सुख देने वाले तथा पृथ्वी को सुख देने वाले। तो यहां मुख्य अर्थ है पृथ्वी को सुख देने वाले। यह सब लीला भगवान इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, पृथ्वी का दुख दूर कर रहे हैं और खास करके असुर वध आदि द्वारा पृथ्वी को सुख दे रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में गोविंद शब्द का प्रयोग किया गया है। इस विवाह में भगवान ने बहुत से लोगों का वध भी किए, रुक्मिणी जी के विवाह में और भी विवाहों में। तो दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का भार दूर कर रहे थे, अतः उन्हें गोविंद कहा गया है। भगवान गोविंद भी विवाह किए वैदर्भी से। रुक्मिणी जी का एक नाम ही है वैदर्भी, विदर्भ देश में उत्पन्न हुई थी इसीलिए इन्हें वैदर्भी कहते हैं। यह विदर्भ नागपुर के पास है, आज भी वो स्थान है और आज भी वो स्थान विदर्भ नाम से कहा जाता है। अमरावती के पास है ना, महाराष्ट्र में है, भारतवर्ष में। तो वहां एक राजा थे, बड़े धार्मिक राजा, बहुत सुशील। उनका नाम था भीष्मक। तो भीष्मक की वह पुत्री थे रुक्मिणी, परम सुंदरी। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीयो मात्रा, श्री की मात्रा। मात्रा का अर्थ होता है स्वरूप, अवतार अथवा पराकाष्ठा। श्री की पराकाष्ठा, साक्षात लक्ष्मी जी थी, श्री राधा रानी का ही प्रकाशन थी। यह अर्थ है श्री का ही जो स्वरूप, जो लक्ष्मी का होता है। तो ऐसी भीष्मक सुता से, रुक्मिणी से भगवान ने विवाह किया स्वयंवर में। स्वयंवर विवाह किया। वास्तव में यदि स्वयंवर का अर्थ समझा जाए कई प्रकार से, तो यह स्वयंवर नहीं रचा गया था रुक्मिणी के विवाह में, परंतु स्वयं वरे का यह अर्थ है कि श्री रुक्मिणी जी ने स्वयं ही श्री कृष्ण का वरण किया था। यह स्वयंवर का यह अर्थ है। स्वयंवर का अर्थ वही होता है कि कन्या स्वयं ही जहां पर वर का चुनाव करे उसको स्वयंवर कहते हैं, स्वयं ही वरण करे। कोई प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है बीच में, जैसे सीता जी के विवाह में शिव जी का धनुष तोड़ने का की शर्त रखी गई थी, द्रौपदी जी के विवाह में सीलिंग में घूमते हुए मछली के आंखों में बाण मारना था, वो नीचे पानी में देखकर जो पहले की बहुत गुणवती कन्याएं होती थी उनका हाथ पकड़ने के लिए बहुत से राजकुमार ललायत रहते थे, अतः उन्हें वीरता का या किसी विशिष्ट योग्यता का मूल्य चुकाना पड़ता था। रुक्मिणी भी परम सुंदरी थी और वास्तव में यह बात है कि उनके पिताजी भीष्म तथा और भाई बड़े भाई को छोड़ करके अथवा जितने भी बंधु थे सब यही चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, क्योंकि उस समय संसार में स्त्रियों में सबसे सुंदरी थी, सबसे गुणवती रुक्मिणी जी थी, और पुरुषों में तो पुरुषोत्तम थे ही, उसमें तो कोई विवाद की बात ही नहीं थी। तो सभी चाहते थे बंधु बांधव, उनको श्री कृष्ण के गुणों का पता हो गया था और उनके धाम का सब कुछ कि द्वारका में रहते हैं, इतने सुंदर हैं, इतने यशस्वी हैं और इतने महान शक्तिशाली हैं, उदार गुण हैं उनमें सब प्रकार से, जितने भी गुणों की कल्पना मनुष्य कर सकता है वे सब सद्गुण श्री कृष्ण में थे। जब भगवान इस पृथ्वी पर थे उसी समय सर्वत्र उनके गुणों की कथा फैल गई थी। इस समय भी हम लोग देखते हैं कोई बहुत गुणवान आदमी अथवा अवगुण वाला भी होता है, उसका भी जस अखबार द्वारा फैल जाता है संसार, है ना? ऐसा नहीं मरने के बाद फैलेगा, अभी जीवित ही रहता है तब तक उसकी सुकथा या कुकथा फैल जाती है इन सारी दुनिया में। तो भगवान का जस कितना फैला होगा शुरू से ही, जरा विचार कीजिए, कोई 7 वर्ष का बच्चा 7 कोस ऊंचा पहाड़ उठा ले, यदि आज ऐसा काम हो जाए तो दुनिया के सारे टीवी और रेडियो अखबार सब भर जाएंगे। हम तो सोचते हैं कि 10-20 दिन कोई दूसरा समाचार आएगा ही नहीं, कल वही पर्वत उठाया हुआ चित्र आएगा, देखो ऐसा लड़का टांग लिया या किया वह किया वह। उस समय भी मीडिया कम नहीं था, श्री नारद जी जैसे ऋषि तीनों लोकों में प्रचार करने में समर्थ थे क्षण भर में सर्वत्र। तो भगवान का पर्वत उठाना, कालिये के फणों पर नृत्य करना, 2-2 बार आग पी जाना, सांप के पेट में जा करके और बच करके आ जाना अघासुर के, इंद्र का मान मर्दन करना, ब्रह्मा जी से भी बात न करना, ब्रह्मा जी गिड़गिड़ा रहे थे चरणों में गिर कर, ये सब कथाएं, ये सब जस और उनके सौंदर्य की अद्भुत कथा तीनों लोकों में सबके वर्णन का विषय थी, विषय थे सब। सब लोग कृष्ण की बात किया करते थे, यहां तक कि जो विरुद्ध लोग थे वे भी रात दिन कृष्ण के विषय में चर्चा करते थे। ऐसे विरुद्ध में मीटिंग करते थे लेकिन चर्चा कृष्ण की करते थे, बैठते थे राजा लोग जरासंध आदि, तो कहां है यहां पहुंच गया, उसको मारना है, बहुत है बहुत सुंदर लेकिन बहुत बदमाश यही रात दिन चर्चा किया करते थे। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है एकादश स्कंध में कि जितने भी कवि थे उस समय इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में कहीं भी, उनके वाणी का श्री कृष्ण ने अपहरण कर लिया था, कृष्ण के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं थे, ऐसा भगवान का जस फैला हुआ था। तो विदर्भ देश में महाराज भीष्म के आसपास जो भी थे सभी चाहते थे कि श्री रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, और घर के लोग तो बिल्कुल चाहते थे, लेकिन जो बड़ा भाई था रुक्मी जिसका नाम था वह भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष करता था। बात यह थी कि जैसे तैसे वह कंस का मित्र हो चुका था पहले, ये कथाएं हैं, तो कंस का जब वध कर दिया भगवान ने, बस इसी कारण से वो श्री कृष्ण से बैर ठान लिया। ये लोग ये विचार नहीं करते थे कि कंस वास्तव में वध के योग्य था, बहुत पापी था, दुराचारी था, ये सब बातें मित्रता के आवेश में नहीं समझ पाते थे। क्यों वध किया, बल्कि ये लोग निंदा करते थे कि इतना पापी आदमी है कृष्ण के अपने मामा तक का वध कर दिया है, और मामा अपने भांजों का वध कर दिया है ये नहीं देखते थे। जन्म लेते ही कितने भांजों का वध किया था इसको वे लोग नहीं देखते थे। इस तरह से कृष्ण के प्रति वैर बांध लिया था। अतः कृष्ण से विरुद्ध जो लोग थे उस समय, जिस जगह संध, इन सब के साथ वो हो गए थे। इसलिए जरासंध ने कहा, जरासंध से पूछा कि मैं अपनी बहन का विवाह किससे करूं। जरासंध ने कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा व्यक्ति शिशुपाल है, क्योंकि शिशुपाल कट्टर दुश्मन था कृष्ण का, बस यही उसकी योग्यता थी। वो तो जन्म जन्म से वैर भाव का पोषण होता आ रहा था, भगवान का पार्षद था, संकादिक ने साथ दे दिया था, इस साथ के कारण अज्ञात रूप से ही भगवान के प्रति वैर भाव बना हुआ था। तो बिना किसी कारण के शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली देता रहता था। ऐसा लिखा गया भागवत के सातवें स्कंध में कि जब से बोलना चालू किए दंतवक्त और शिशुपाल पुतली बोली में, तो सबसे पहला उन्होंने कृष्ण को गाली देना चालू किया, बोली जब बोलने लगे थे। ऐसा लिखा गया है कल भाषण आरभ्य, कल भाषणात आरभ्य, कल भाषण, बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं जैसे पापा मम्मी करते हैं, तो वो तो थाला कृष्ण भैया ऐसे ही कहना चालू किया होगा कुछ न कुछ। और इस बात को कौन कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ शिशुपाल की मुक्ति देख करके राजसूय सभा में, तो वही नारद जी से कह रहे हैं कि यह कैसे हुआ। देन ने तो निंदा किया था भगवान का, तो उसे ऋषि लोग नरक में पटक रहे थे, और यह तो आरभ्य कल भाषण, जब से कल भाषण तोतली बोली बोलना चालू किया उसी समय श्री कृष्ण की निंदा चालू किया, और अब तक केवल निंदा ही किया, फिर भी कैसे भगवान के चरणों में समा गया, कैसे उनका पार्षद बन गया, मेरी बुद्धि इस विषय में काम नहीं कर रही है। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, न कि द्रोह करने से, वैर करने से, ये हुआ कैसे। तो महाराज युधिष्ठिर का संबंध था शिशुपाल से, क्योंकि वह भगवान के, इनका युधिष्ठिर महाराज का मौसेरा भाई था, मौसेरा भाई था। इस तरह से जानते थे कि बचपन से ही क्या क्या आदत रही है इन सब लोगों की। तो वही कहते हैं बचपन से ही गाली देता था, लेकिन वह मुक्त हो गया। तो मैं यह कह रहा हूं कि शिशुपाल का जन्म से ही वैर भाव था भगवान के प्रति, और वह एक देश का राजा भी था, राजकुमार था, सुंदर भी था। इसलिए जरासंध ने कहा कि रुक्मिणी के लिए सबसे योग्य वर है शिशुपाल। लेकिन चारों तरफ प्रचार होता था, हल्ला होता था, तो सब लोग कभी कभी जरासंध के सामने भी, शिशुपाल के सामने भी कह देते थे रुक्मिणी के लिए सबसे योग्य श्री कृष्ण। इस बात से लोग बहुत जलते थे, और इनको आशंका थी कि रुक्मिणी का विवाह जब होगा शिशुपाल के साथ, तो उसमें बाधा देने के लिए श्री कृष्ण जरूर आएगा। इसलिए रुक्मिणी का जब विवाह होने वाला था तो ये लोग सेना ले लेकर के आए थे शिशुपाल का विवाह कराने के लिए। ऐसे बारात नहीं आई थी, समग्र बल वाहना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपनी समस्त वाहन और समस्त सैनिकों को लेकर के आए थे, कोई बाकी नहीं रह गया जब विवाह होने वाला था। लेकिन उन समस्त राजाओं के समस्त सैनिकों को बुरी तरह से परास्त करके भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। क्या भगवान की भगवत्ता है, राजा लोग कुछ भी नहीं थे उनके सामने। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे सियारों के मध्य से सिंह अपना भाग ले जाए, वैसे रुक्मिणी जी को भगवान ले गए। ले गए उस समय ये लोग बहुत बोल रहे थे, पकड़ो पकड़ो, हाय हाय, कैसे ले गए कैसे ले गए। तो सुखदेव गोस्वामी को ऐसा लग रहा है जैसे सियार हुआ हुआ कर रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह आए और रुक्मिणी जी का हरण करके चले गए, और ये सब देखते देखते हुआ हुआ है। सिंह कभी अपना भाग ले जाता है तो बाद में सियार कुछ दूर पर हुआ हुआ करने लगते हैं, लेकिन निकट नहीं आ सकते। इतना बल है भगवान में। तो यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, प्रमथ तरसा राज्ञ सालवादिन चैद्य पक्षगान। चैद्य चेदी नरेश शिशुपाल के पक्ष में बहुत से राजा आए थे उस सांब सभा में, विवाह में, विवाह महोत्सव में। चैद्य पक्षगान, चैद्य के पक्ष में रहने वाले, चैद्य चेदी राज को चैद्य कहा गया। दमघोष नाम था चेदी देश के राजा का, तो उनका उत्तराधिकारी था शिशुपाल, इसलिए इसको चैद्य कहते हैं। इसके पक्ष में राजा लोग आए थे, तो उसमें साल्व नाम का एक राजा बहुत बलवान था, वह आया था। साल्व बहुत प्रसिद्ध राजा था, उसने भी द्वारका पर आक्रमण किया है, वह दो अध्यायों में कथा दी गई। साल्व, तो सालों को आदि कहा गया है यहाँ पर, सालवादि। कहीं कहीं लिखा गया है मगधादि। जरासंध मुख्य था उससे ना, उससे समाज में, लेकिन यहाँ पर सालों को क्यों पहले लिखा गया? लड़ने का जितना भी हौसला था उसमें यही सबसे बड़ा था, यह सेनापति था उस विवाह में सालों। और जरासंध तो यह सोचता था कि हमको तो इसमें खड़ा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमसे तो कृष्ण हार करके भाग ही गया है। तो वो ये सोचता था कि मैं एक दोस्त हूं, लड़ना नहीं पड़ेगा चुपचाप ऐसे। और लड़ने वालों में साल्व था, और भी बहुत से दंतवाक्त विदुरथ कई राजा थे उसमें। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रमथ्य, मथ्य में प्र उपसर्ग लगा रहा हूं, प्रकर्षण मथ्य, राजाओं को मथ करके भगवान हरण कर लिए रुक्मिणी जी को। मथने का क्या अर्थ है? बारंबार यह शब्द आया है इस प्रसंग में, मथ है, प्रमथ, मथ करके, जैसे दही को मथ करके उसमें से नवनीत निकाल लिया जाता है। तो दही की चाहे हालत बिगड़े, मठा बन जाए, लेकिन घी निकलना चाहिए। जैसे देखते हैं इसको प्रमंथन कहते हैं, मथन। इस तरह से भगवान ने राजाओं को मथ दिया। मथ दिया मतलब परेशान हो गए, सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, सब कुछ किए, लेकिन सब तहस नहस हो गए। उसमें कितने लोग मर गए, कितने के अंग भंग हुए, कितने का अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए, मनोबल कम हो गया सारा सब। इस तरह से कोई शक्ति उठा करके रखे नहीं, बचाए नहीं, सबका प्रयोग किए, लेकिन सब कुछ भगवान ने ध्वस्त कर दिया। यह अर्थ है साल्व आदि राजाओं को मथ करके, और उसी प्रकार से रुक्मिणी का हरण कर लिए जैसे गरुड़ जी ने देवताओं के समाज से सुबह कलश हरण किया। यह प्रसिद्ध कथा है। एक बार गरुड़ जी की मां बंदी हो गई थी कद्रु का, कद्रु उसकी सौत थी, सर्पों की मां कद्रु, और दीनता गरुड़ जी की मां थी। एक ऐसा कारण है कि यह दीनता अपनी सौत की सेवा कर रहे थे, अधीन हो गई थी। सर्पों ने मीटिंग किया कद्रु के लड़कों ने, गुरु जी से कहा कि हम लोग तुम्हारी मां को तब मुक्त कर सकते हैं जब तुम देवताओं के यहां से अमृत हरण करके ला दो हम लोगों को। यह शर्त हुआ था। तो गुरु जी गए स्वर्ग में, देवता देवराज इंद्र और वरुण जी आदि सारे राजा अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए। वरुण जी आ रहे हैं हरण करने के लिए अमृत, लेकिन उनके बीच में से और उनको पूरी तरह से परास्त करके वरुण जी अमृत कलश ले गए। उनको बहुत किसी को चोंच में पकड़कर पटक दिए, किसी को पंख से मारे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब तहस नहस परास्त हो गए। तो जिस तरह देवताओं को परास्त करके तारक्ष पुत्र गरुण जी सुधा का हरण किया, उसी तरह भगवान ने श्री रुक्मिणी जी का हरण किया। यह उदाहरण श्रील सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लग रहा है कहने में, सुधा ने वह त्रिक्ष का अर्थ होता है, मरीची जी का एक नाम है त्रिक्ष, और तारक्ष का अर्थ है मरीची का पुत्र कश्यप जी, और तारक्ष पुत्र कश्यप पुत्र गरुण। तारक्ष पुत्र ने सुधा का हरण किया था, उस तरह से भगवान ने हरण किया। इस कथा को इतने संक्षेप में सुन करके महाराज परीक्षित और उत्कंठित हो गए और ये प्रश्न करते हैं। राजो वाच भगवान भीष्मक्षुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम् भगवन् श्रोतुम् इच्छामि कृष्णस्यामित तेजसः यथा मागध साल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत्। महाराज परीक्षित कहते हैं भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी बहुत सुंदर मुख वाली थी, रुचिर आनना यह उपलक्षण है, इसके द्वारा रुक्मिणी जी के समस्त सौंदर्य का वर्णन कर दिया गया है। संस्कृत भाषा में एक विशेषता है कि किसी एक अंग के सौंदर्य का वर्णन कर दिया जाए तो उससे अन्य समस्त अंगों के सौंदर्य को अपने आप समझ लेना चाहिए। यदि कह दिया जाए, जैसे भगवान को कहते हैं कमल नयन अरविंदाक्ष, भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर हैं, केवल आंखें ही सुंदर हैं ऐसी बात नहीं है, उसके द्वारा समग्र सौंदर्य कह दिया गया, इसको उपलक्षण कहते हैं। तो रुचिरान नाम, जिसका आनंद बहुत रुचिर सुंदर, अर्थात परम सुंदरी थे रुक्मिणी। ऐसी रुक्मिणी के साथ भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया, यह हमने सुना है, पहले भी सुना है और आप भी आज कह रहे हैं तो सुना। इति श्रुतम का अभी सुना है यह बात नहीं है, जो बहुत पहले सुन चुके हैं महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के विषय में, और अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में, तो ऐसा हमने सुना है कि राक्षस विधि से भगवान ने विवाह किया। आठ प्रकार के विवाह शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे दैव विवाह, ये सबसे अच्छा विवाह वो है। दैव विवाह का अर्थ होता है देवताओं में विवाह, देवता लोग किस तरह से विवाह करते हैं, देवता लोग इस तरह से विवाह करते हैं कि माता पिता या कन्या के कोई भी गार्जियन अभिभावक कन्या को अर्पित करते हैं किसी वर के लिए, किसी वर का अन्वेषण करके और उसको अर्पित करते हैं, तो इसको दैव विवाह कहा गया है, देवता का यह विवाह। अच्छा, गंधर्व विवाह का अर्थ होता है गंधर्व लोग जैसे विवाह करते हैं, उसने केवल लड़के ने लड़की को पसंद किया और लड़की ने लड़का को पसंद किया, बस पसंद ही सारा नियम है, तो इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। आज के युग में इसको लव मैरिज कहते हैं, लेकिन ये तो लस्ट मैरिज है, ये लव मैरिज नहीं है, ये गंधर्व विवाह इतना बुरा नहीं है। जैसे महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया, वो एक विधि है शास्त्रों के अनुसार, उस पसंद के पीछे बहुत बड़ा आधार होता है, बैकग्राउंड होता है, ऐसा नहीं कि कहीं किसी को कोई पसंद कर ले। जैसे महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को पसंद किया, तो उनके मन में यह बात आ रही थी, उन्हें शकुंतला अच्छी लग रही थी और ऐसा मन में आ रहा था कि यह मेरी पत्नी बनेगी। अपने आप ही सोचते हैं कि नहीं चेतः कौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित, निश्चित ही यह लड़की क्षत्रिय वंश की है, इसी से इसमें मेरा मन जा रहा है, नहीं तो नहीं जाता। उन्हें वो पसंद पड़ रही थी ब्राह्मण के आश्रम में, कर्ण मुनि के आश्रम में, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो सकता था कि वो ब्राह्मणी हो, लेकिन महाराज दुष्यंत का मन उसमें जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि निश्चित ही क्षत्रिय कन्या है, अन्यथा पूर्ववंशियों का मन तो कभी अधर्म में जा ही नहीं सकता, मुझे अपने मन पर विश्वास है यह क्षत्रिय है, इसीलिए मेरा मन इसमें जा रहा है। बाद में जब उन्होंने पूछा तो पता लगा कि वो विश्वामित्र की पुत्री है और क्षत्रिय है। गंधर्व विवाह इस तरह से देश काल नियम के अनुसार उन्होंने विवाह किया। तो और राक्षस विवाह का अर्थ होता है, यह भी विवाह की विधि है, जब वर बलात् हरण करता है कन्या का तो इसको राक्षस विधि कहते हैं। राक्षसों में ऐसे ही विवाह चलता है राक्षस विधि बलात् हरण करता है, लेकिन यह भी एक विवाह है जो जीवन भर टूटता नहीं है। हमने देखा बॉम्बे में अभी 2-3 साल पहले एक राक्षस विवाह, एक लड़का आया एक घर पर, पहले से उस लड़की से उसका प्रेम था, तो पुलिस लेकर के आया और लड़की के माता पिता नहीं थे घर पर, और लड़की का सारा सामान और उसको लेकर के अपने घर चला गया। बाद में वो लोग विवाह किए, उसके माता पिता हमसे बहुत दुख प्रकट कर रहे थे, ये ऐसा हो गया। फिर मैं मिला उस लड़के से तो मैं कहा ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन जीवन भर संबंध रखना, कभी छोड़ना मत। तो इस समय वो लोग सुखी हैं, दोनों इस्कान के भक्त हैं, दीक्षित हैं। तो प्रकट राक्षस विवाह देखा और बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो विवाह है, विवाह का मतलब ही होता है निर्वाह या विशेष वाह, नितरम वाह या विशेषण वाह। वाह का अर्थ होता है परवरिश करना, जीवन भर निर्वाह कर लिया, इसको विवाह कहते हैं। और आज किया 2 वर्ष के बाद छोड़ दिया तो निर्वाह हुआ ही नहीं, ये विवाह नहीं हुआ। इसमें जो विवाह शब्द है आपने सुना होगा संस्कृत, निर्वाह प्रवाह विवाह, इसका अर्थ ही होता है कि अब दोनों जीवन भर साथ देंगे, निभाएंगे, निर्वाह करेंगे, एक दूसरे का पालन पोषण करेंगे, एक दूसरे की गलती को सहते हुए साथ निभाएंगे, विवाह का यही मतलब होता है। तो ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि राक्षस विधि से विवाह होता है, लेकिन विवाह होना चाहिए, निर्वाह होना चाहिए जीवन भर। तो भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया, राक्षसों में ये विधि चलती है, और वैसी जरूरत थी, जब घर के लोग विरोध कर रहे थे, रुक्मी विरोध कर रहा था और उसके पक्ष में बहुत से राजा लोग आए थे, तो वहां तो राक्षस विधि से ही विवाह हो सकता था, तो भगवान ने ऐसा विवाह किया। महाराज परीक्षित कहते हैं ऐसा हमने सुना है, लेकिन उसी को मैं और विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ और कह रहा इति श्रुतम, तो भगवान श्रोतुम इच्छामि कृष्ण सामित्य जथा मागत सालवादिन जीतवा कन्या मुपाहरत। हे भगवान, हे सर्वज्ञ श्री सुखदेव गोस्वामी, मैं उसी लीला को पुनः सुनना चाहता हूँ। वैसे भगवान का तेज अमित है, अनंत है, तो जिस प्रकार उन्होंने जरासंध सालव आदि राजाओं को जीतकर कन्या का अपहरण किया, यह हम सुनना चाहते, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान श्रोतु इच्छा, जरा विचार कीजिए, महाराज परीक्षित का जीवन अब केवल दो दिन या 3 दिन बाकी है, केवल उन्हें 2 दिन जीना है और भागवत सुनने में पीछे के सारे प्रसंगों में कई दिन उनका बीत चुका है। और इस जीवन की अंतिम घड़ी में वे भगवान के विवाह की कथा सुनना चाहते हैं। कितना उनके मन में उदात भावना है भगवान की लीलाओं को सुनने की। ऐसे बाहर से देखा जाए तो यह एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए सुनने की बात नहीं है, वो विवाह की बात सुने, लेकिन ये भगवान की लीला है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान श्रोतुम इच्छा में सुनने की इच्छा कर रहा हूं अमित तेजस्वी कृष्ण की इस लीला को, और विशेष करके ये सुनना चाहता हूँ किस प्रकार उन्होंने सल और जरासंध आदि राजाओं को जीता और रुक्मिणी का अपहरण किया। मैं इसको सुनना चाहता हूँ। जब व्यक्ति कृष्ण भावना के बहुत ऊंचे शिखर पर हो जाता है, डेवलप करते उसकी चेतना शुद्ध होती है, तो भगवान की लीलाओं को सुनने की उत्कंठा बहुत बढ़ जाती है। यह एक मीटर है कि वास्तव में व्यक्ति कृष्ण भावना के ऊंचाई पर चढ़ रहा है कि नहीं। तो महाराज परीक्षित के लिए क्या सुनने की यही चीज थी, बहुत ही सुन सकते थे। अभिराज का हिसाब किताब करके जाना है, बच्चे को ये देना है, उत्तराधिकार देना है, जन्मेजय को ये करना है, वो करना है, बहुत काम राजा के लिए। एक साधारण गृहस्थ के लिए कितना काम होता है, ये सौंपना वो सौंपना, और कहिए कि अरे भागवत भी होने वाला है, हाँ ये तो होगा ही, लेकिन ये जिम्मेवारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना है, वो करना, जरा इसको करें। वे कितने महान थे, कितना उनका चित्त निर्लिप्त था संसार से, कि सुखदेव गोस्वामी से आग्रह करके इस कथा का व्यास कराना चाहते, विस्तार कराना चाहते। मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपया सुनाइए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी थोड़ी देर रुक कर महाराज परीक्षित पर देखने लगे, कितनी उत्कंठा है। तब कृष्ण कथा की विशेषता बता रहे हैं महाराज परीक्षित। ब्राह्मण कृष्ण कथा कुल्या माधवी लोक मलापहा कोनु तृप्येत श्रृणवानो सुतज्ञो नित्य नूतन। हे ब्राह्मण, हे वेदज्ञ और हे कृष्ण भक्त, कृष्ण कथा पुण्या माधवी लोकमलापः। कृष्ण कथा की 3 विशेषता बता रहे हैं। कृष्ण कथा पुण्या, स्वयं परम पवित्र, स्वयं बिल्कुल शुद्ध। जैसे जीवों के कर्म होते हैं, जो जीवों के कर्म में अविद्या लिप्त रहती है, उस तरह से भगवान के किसी कर्म में लीला में अविद्या का नामो निशान नहीं है। इस जगत में जीव जो भी कर रहा है वो महामाया के दबाव में कर रहा है। उसका बोलना, चलना, हंसना, गाना, कुछ भी करना, ये सब अशुद्ध है वास्तव में। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि ये माया पिशाची की गोद में जीव है। कतर निद्रा जावो माया पिशाची कोले, माया पिशाची के कोल में, गोद में जीव है। तो जो कुछ भी उसका कर्म है सब अशुद्ध माना जाता है। अगर उन कर्मों को कोई सुने या बोले तो वह आदमी स्वयं ही अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान की जो कथाएं हैं, ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य, स्वयं दिव्य है, निर्मल है, और सुनने और कहने वाला भी पवित्र हो जाता है। कृष्ण कथा इतना निर्मल, चूंकि वह चित शक्ति के द्वारा संपादित किया गया, भगवान की स्वरूप शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा कर्म नहीं होता है। देखने में भगवान को लगे कि वे युद्ध कर रहे हैं या विवाह कर रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं वो उनका चित विलास है, स्वरूप शक्ति का प्रकाशन है सब। जैसे सूर्य सहज प्रकाशमय है, उस तरह से भगवान सहज चिन्मय है, दिव्य है। तो उनकी लीलाएं भी सहज कृष्ण स्वरूप है, चिन्मय है, दिव्य है। इसको पुण्या कहा गया। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान वस्तु है और उसकी कृपा से दूसरों में देखने की शक्ति आ जाती है, उसी तरह से भगवान के कर्म, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। और वो तो अपने आप में दिव्य हैं ही, उनका कोई आश्रय ले, उन्हें कोई सुने, उन्हें कोई उच्चारण करे नाम आदि का, तो वह व्यक्ति भी प्रकृति के धरातल से ऊपर हो जाते, मुक्त हो जाते हैं। इसको पुण्य कहते हैं। उसी प्रभाव का वर्णन फिर कर रहे हैं सर्वलोक मलापः। सर्वलोक मलापः समस्त जीवों के मल का अपहनन करने वाले। मल का अर्थ कर्मबंधन, अज्ञान, दुर्वासना, ये मल है जी। इसको डायरेक्ट मल कह रहे हैं महाराज तरीके। सर्वलोक मलापः, इस अविद्या का, दुर्वासना का हरण करने में ये समर्थ है। हम लोगों के चित्त की शुद्धि, चेतना की शुद्धि तभी होगी जब हम भगवान के कथाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत अपना रियलाइजेशन व्यक्त कर रहे हैं, ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य माधुरी लोक मलापः, समस्त लोगों के दुर्वासना पर्यंत विद्या का नाश करती है कृष्ण कथा, शुद्ध करती है। तो प्रायः ऐसा संसार में देखा जाता है कि कोई भीषण रोग का निवारण करने वाली कोई दवा होती है तो कड़वी होती है, ज्यादातर ऐसा है ना। लेकिन यह तो माधुरी, मधु से माधुरी बना हुआ, बहुत मधुर है। श्रवण काल में या वर्णन काल में या चिंतन काल में भी जीव आनंद में मग्न हो जाता है, जीव आनंद से मग्न हो जाता है। अपनी स्थिति को महाराज प्रकारांतर से व्यक्त कर रहे हैं कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मैं मधु पी रहा हूं, दिव्य मधु, अद्भुत, बहुत मधुर है। एक तो स्वयं पवित्र है और परम मधुर है और सबके मनोमल का नाश करने वाली है, सबके। यहां सर्वलोक का अर्थ है वक्तृश्रोत्री, सब जो भी कहेगा सुनेगा या अनुमोदन करेगा चिंतन करेगा उसका मनोमल नाश। सुनवाने का अर्थ सुन रहा है, श्रोतज्ञ है, जानता है कृष्ण कथा के मर्म को और सुन रहा है। तो कौन ऐसा रसिक है जो कृष्ण कथा को सुनने से तृप्ति मान लेगा, मुकर जाएगा? कोई ऐसा नहीं है, उसकी लालसा और बढ़ती जाएगी, क्योंकि कृष्ण कथा का रस नित्य नूतन है, नित्य नूतन है। और संसार की कथाएं तुरंत पुरानी हो जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान की कथा नित्य नूतन रहती है। जैसे भगवद गीता कम से कम लगभग 5000 वर्षों से पढ़ी जा रही है, लेकिन नित्य नूतन। संसार की कथाएं जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह तुरंत लोग फेंक देते हैं कि ये, कुछ लोग तो कोई चीज एक बार पढ़ करके केवल देख करके फेंक देते हैं। ये नित्य पुरानी, नित्य भाषी है, ताजा है ही नहीं। न्यूज नाम भर है वास्तव में, न्यूज क्या है, सब वर्ड्स है। न्यू में एस लगा करके बहुवचन में कहा गया, सब न्यूज, न्यू क्या, सब पुरानी बातें हैं, न्यूज नहीं है। और कोई मर गया तो लोग कहेंगे कि न्यूज है, न्यू क्या हुआ, ऐसा या कुछ हो गया संसार में, कोई घटना घटी तो न्यूज 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 न्यूज। भगवान की कथाएं नित्य नवीन बनी रहती हैं। ये तो एक दिन के लिए, मान लीजिए एक घंटे के लिए न्यूज बनी और बाद में ओल्ड से होकर के चली गई। ऐसी बहुत सी बातें हम लोग देखते हैं संसार में, वो बहुत दिन रस नहीं रहता है, तुरंत खत्म हो जाता है, खत्म। लेकिन भगवान की कथा, यही श्रीमद् भागवतम है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने पृथ्वी पर इसका प्रवचन किया, लेकिन कितने वर्ष बीत गए, हजारों हजार वर्ष बीत गए, उसके बाद भी भागवत रोज लोग पढ़ रहे हैं, आनंद से सुन रहे हैं। हम तो वृंदावन में देखते हैं एक समय में कम से कम 20-25 भागवत तो चलता ही रहता होगा, सबसे कम चलता होगा तब भागवत सप्ताह है वृंदावन में, 20-25 तो चलता ही रहता होगा, और सावन में, फागुन में, कार्तिक में तो 100 भी हो सकता है, जहां तहां कोई घरों में हो रहा है, कोई पंडाल में हो रहा है। 108 पंडित पढ़ते हैं तो 1008 पंडित पढ़ते हैं, ये चल रहा है, और पढ़ने से ही उनकी जीविका भी चल जाती है। ये ग्रंथ ऐसा है जो पढ़ रहे और कोई काम नहीं है, पढ़ रहे हैं, ये नित्य नूतन है। ये महामंत्र हम लोग वही मंत्र जप रहे हैं, अनादि काल से सब जपा जा रहा है, रोज रोज जपते हैं, लेकिन नित्य नूतन है ये, कभी भाषी नहीं होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे परीक्षित का यह अनुभव है कि कृष्ण कथा नित्य नूतन है, नित्य नवीन है, और कोई भी रसज्ञ व्यक्ति जो रस का रहस्य जानता है, कृष्ण कथा सुनने से कभी तृप्त नहीं हो सकता है, उसकी लालसा और बढ़ती जाती है। तो मेरी लालसा बढ़ रही है, इसलिए आप हमें यह कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ कर रहे हैं। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस् पंच भवन पुत्र कन्यका च वरानना। विदर्भ देश में एक राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक, जो बहुत महान थे, गुणों में बहुत महान राजा थे। तस्य पंच पुत्र अभवन, उनके 5 पुत्र हुए, कन्या एका च वरानना, और एक कन्या हुई जो वरानना। श्री सुखदेव गोस्वामी भी वरानना कह रहे हैं, महाराज परीक्षित भी वरानना कह रहे हैं। वर आनना बहुत सुंदर मुख है रुक्मिणी जी का, अर्थात तो परम सुंदरी है, भगवान की प्रेयसी है, तो उनके सौंदर्य का इस तरह से वर्णन किया जा रहा है। बहुत सुंदरी उनकी कन्या हुई एक, 5 पुत्र, 5 पुत्र अभवन, और एका कन्या च अभवत, इस तरह लिंग व्यत्यय से अर्थ किया जाएगा। एक कन्या हुई, तो 5 पुत्रों का तो कोई विशेषण नहीं बताया, लेकिन कन्या का विशेषण बता रहे हैं, बहुत सुंदरी कन्या। तो उनके नाम बता रहे हैं, रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनंतर रुक्मकेशो रुक्मवाली रुक्मिणीसा स्वसा सती। अग्रज रुक्मी सबसे पहला पुत्र था, अग्रज जो आगे जन्म लिया था, अग्रज रुक्मी, और अनंतर यहां भी लाया जाएगा, इसके बाद रुक्मरथ, तीसरा हुआ रुक्मबाहु, चौथा रुक्म केश, पांचवा रुक्म माली, और ऐसा इन सब की स्वसा बहन रुक्मिणी, इन 5ों की जो बहन हुई वो रुक्मिणी। वही सती, सती के 2 अर्थ हैं, एक तो परम वैष्णवी और दूसरा परम पतिव्रता। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में भी इसने कभी भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया है, बचपन से प्रारंभ से ये सती हुई स्त्री, जिसने सत्य को पकड़ा था वो है सती। जो वैष्णवी को भी सती कहते हैं, जो विष्णु को कृष्ण को अपने जीवन में सब कुछ समझे, वह भी एक बहुत बड़ी सती स्त्री है। और ऐसे पतिव्रता स्त्री के लिए सती शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर भी गुण वर्णन किए रुक्मिणी जी का, रूप में सबके नाम में लगा हुआ है, तो इसका कारण एक कथाकार बताते थे कि ये सब सोना की तरह गोरे थे। संस्कृत में रूप में सोना को भी कहते हैं, गोल्ड को कहते, पीले पीले शरीर वाले थे, बहुत सुंदर इस तरह से, तो सब में रूप में शब्द लगा पड़ा। रुक्मी रुक्मरथ रुक्मबाहु रुक्मकेश रुक्मवाली और रुक्मिणी, सब में रुक्म शब्द है। स सोपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः गृहागतर्गीयमानास्तम्मेने सदृशं पतिं। सा रुक्मिणी, वह रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को ही अपने लिए योग्य पति मन में मान ली। कृष्ण को कैसे जान गई वह? तो बताते हैं कि गृहागतई ही गीयमाना, घर पर जो भी आते थे साधु महात्मा महाराज भीष्मक के यहां, तो वे लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप वीर गुण और श्री का बखान करते रहते थे। चार चीज भगवान की सुंदरता का गीत गाते थे राज दरबार। देखिए, जैसे मैं पहले कहा कि भगवान कृष्ण का जस सर्वत्र फैल चुका था, तो श्री कृष्ण का जस है महाराज भीष्मक के राज दरबार में या अंतःपुर तक में गाया जा रहा था। तो रूप वीर्ज, और वीर्ज का अर्थ है वीरता, पराक्रम, कितने बड़े वीर हैं, जैसे गोवर्धन धारण आदि, काली दमन या कंस का वध आदि, ये सब वीर्ज। और गुण, गुण का अर्थ है दानशीलता, दयालुता, ये सब बहुत बड़े गुण माने गए। और श्री, श्री का अर्थ वैभव, धन। तो जो घर पर आते थे गृहागते ही गीयमाना, इन चारों के लिए कहा गया। घर पर जो आते थे कवि या बड़े बड़े विद्वान साधु महात्मा जैसे नारद जी आदि, ये सब गाते ही रहते थे, गाते रहते गीयमाना, सब श्री कृष्ण के रूप जस लीला गुण आदि को गाते रहते थे। तो श्री कृष्ण के रूप वीर गुण श्री को सुन करके रुक्मिणी ने तम मैंने सदृशम पति, अपने मन में उसने अपने लिए योग्य पति माना, मान ही लिया कि यही हमारे पति हैं। यद्यपि उसने देखा नहीं था श्री कृष्ण को, लेकिन सुन करके मान लिया। किनके रूप वीर्ज गुण श्री? मुकुंद के। मुकुंद शब्द अपने आप में ही बहुत महान है, जो मुक्ति को भी कुत्सित कर देने वाला प्रेम सुख दे उसको मुकुंद कहते हैं, या जो मुक्त कर दे सब प्रकार के दुख से श्री कृष्ण मुक्त कर देते हैं। यह भगवान का स्वभाव है, वे आनंदमय है, और कोई भी व्यक्ति किसी बंधन में है, दुख में है, तो श्री कृष्ण का चिंतन करने से, श्री कृष्ण का श्रवण करने से, श्री कृष्ण के विषय में बोलने से वह व्यक्ति तत्काल ही दुख से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उनका एक नाम है मुकुंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो मुकुंद के रूप वीर्य गुण और श्री का वर्णन बारंबार होता रहता था महाराज भीष्मक के यहां, अतः उनके गुण रूप श्री को सुन करके रुक्मिणी ने मन में मान लिया कि यही हमारे पति, मैं इन्हीं को अपना पति बनाऊंगी, जब भी बनाऊंगी। बहुत प्रारंभ में ही रुक्मिणी ने अपने मन में इस प्रकार की धारणा कर लिया। यहां पर बहुत सुंदर संदेश दिया जा रहा है कि सबकी दशा वास्तव में रुक्मिणी जैसी ही है। हम लोग भी भगवान को तो साक्षात देख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, लेकिन सुन सकते हैं उनके विषय में। जिस प्रकार रुक्मिणी जी ने सुना, तो उस तरह से सुन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को न्यौछावर कर सकता है, अपने को समर्पित कर सकता है कृष्ण को। कभी कभी लोग पूछते थे श्रील प्रभुपाद जी से कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तो उस समय तो भगवान डायरेक्ट थे रथ पर, तो कोई कुछ भी छोड़कर समर्पण कर सकता था, और अब वो कहां करे समर्पण, सब धर्म छोड़ करके कहां जाए, किसको समर्पण करे। बारम्बार श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि लोग ऐसा पूछा करते हैं कि अब हम कृष्ण को कहां समर्पण करें, तो वो बताते हैं कि समर्पण का अर्थ है कृष्ण जो कर कहने के लिए कर रहे कह रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं वो करो, यदि हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो हम समर्पण कृष्ण को ही कर रहे हैं। इस तरह से समर्पण किया जाता है। और श्री कृष्ण को मान लिए कि हमारे प्रभु हैं, हमारे त्राता हैं, हमारे स्वामी हैं, सुहृद हैं, सब कुछ श्री कृष्ण है, इस तरह से मान करके मन ही मन समर्पण प्रारंभ किया जाता है। तो क्या रुक्मिणी ने सब भगवान को देख करके समर्पण किया था? नहीं, सुन करके किया था। सा उपश्रुत्य, उपकार थे अधिक किया था, खूब अच्छी तरह से रुक्मिणी जी ने सुना था भगवान के विषय में और सुन करके समर्पण किए थे। और उधर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ताम बुद्धि लक्ष्य अवदार जा रूप शील गुणाश्रयान कृष्णस्त सदृश विभार जाम समुद्वोढुं मनो दधे। जैसे रुक्मिणी ने अपने मन में मान लिया कि श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के बुद्धि और स्त्री जनोचित लक्षण, उदारता, सौंदर्य, शील गुण आदि को सुन करके मान लिया कि रुक्मिणी मेरी पत्नी है। भगवान ने भी मन में विवाह करने का संकल्प कर लिया। इसके द्वारा यह नहीं समझना चाहिए कि अब घर घर में रुक्मिणी की भी कथा फैली हुई थी। ये राजाओं में कुछ लोग चर्चा करते थे, भीष्मक की पुत्री ऐसी है, तो भगवान ने भी सुना। लेकिन रुक्मिणी ने जैसे भगवान के गुणों को सुना, तो भगवान के गुण तो सर्वत्र गाए जा रहे थे, सर्वत्र गाए जा रहे हैं। रुक्मिणी की बात भगवान ने सुना तो उन्होंने मन में मान लिया कि सदृशिम भार्जन, यह मेरे योग्य भार्जा है और इसके साथ मैं विवाह करूंगा। भगवान ने मन में भार्जा माना। भार्जा मानना और वाइफ मानना दोनों में अंतर है, समझे, सूक्ष्म अंतर है। भार्जा मानने का अर्थ है कि मैं उसका भरण करूंगा। भार्जा का अर्थ है जिसका भरण करना चाहिए, जिसे भोजन देना, कपड़ा देना, मकान देना, संतान देना, ये पति का कर्तव्य है। इन सब के द्वारा जब किसी स्त्री का भरण किया जाता है पत्नी के रूप में, तो उसको भार्जा कहते हैं। तो इधर तो कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी ही भरण करती है पति को। ये सब तो जो भी हो तो देश काल के अनुसार ऐसा हो करना पड़ता है, लेकिन जनरल यही आइडिया है कि पति भरण करता है और पत्नी का भरण किया जाता है, इसलिए उसको भार्या कहते हैं। तो भगवान ने मन में मान लिया कि मैं उसका भरण करूंगा। यह भाव भगवान के मन में आया, अपनी पत्नी स्वीकार करके उसकी रक्षा करूंगा, भरण करूंगा, पोषण करूंगा, और यह मन में भगवान ने धान लिया। कृष्णश्च सदृशिम भार्यम समुद्वोढुम मनोदत, मन में भगवान ने संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगा रुक्मिणी से, और रुक्मिणी ने मन में ठान लिया कि विवाह करूंगा। दोनों से दोनों की भेंट नहीं हुई थी। बंधुनाम इच्छताम दातुं कृष्णाय भगिनी नृपम ततो निवार्य कृष्ण द्वेट रुक्मी चैद्यम मन्यत। बंधुनाम इच्छताम दातुं कृष्णाय भगिनी नृपम, बंधु का यहां अर्थ भाई और पिताजी। रुक्मिणी जी के जो पांच भाई थे उसमें केवल रुक्मी को छोड़ करके चारों भाइयों की इच्छा थी कृष्णाय भगिनी दातु, कृष्ण को भगनी अर्पित करने की। भगनी का अर्थ है बहन। वे सब चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण से होना चाहिए, और महाराज भीष्मक भी चाहते थे, परंतु उसने सब मना कर दिया। तत्व निवार्य कृष्ण द्वित, कृष्ण द्वित, कृष्ण का द्वेषी रुक्मी उन चारों का निवारण किया, कहना ऐसा नहीं हो सकता। प्रस्ताव बंद कर दिया चैद्यम अमन्यत, चैद्यम चेदीराज शिशुपाल को उसने माना नहीं, रुक्मिणी के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है शिशुपाल, विवाह शिशुपाल के साथ होगा और मैं इस घर में बड़ा हूं इसलिए मेरा चलेगा और किसी का नहीं। सीधी बात, इसका मतलब उसके कहने का अर्थ है कि मैं बड़ा भाई हूं इसलिए चारों की बुद्धि मिलाकर भी मेरे बराबर नहीं है, मैं बड़ा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह होना हम लोगों के लिए कलंक की बात है, उसके पास है क्या कृष्ण के पास, अपनी जन्मभूमि भी छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दिया, कहीं समुद्र में घर बनाकर रहता है, उसका तो कुछ है नहीं, इतना गरीब है, और यही लूटना पाटना युद्ध करना इसको मारना उसको मारना यही उसका काम है, इतना छोटा है तभी से केवल हत्या करो ये करो। उसको ये पता नहीं था कि सब असुरों का दुष्ट लोगों का वध भगवान कर रहे हैं। किसी भी तरह से वह कृष्ण में दोष देखा और शिशुपाल में गुण देखा, इसलिए अमन्यता माना, बहुत माना कि बहुत योग्य जीजा जी मिलेंगे हमारे लिए, वो ये सोच रहा था। शिशुपाल कहां भगवान, कहां एक कौआ और कहां गरुड़ जी, और वो बस कौआ को ही समझ रहा था, नहीं यही पक्षी राज है, यही पक्षी राज है, धन्य हो जाएगी मेरी बहन इसके साथ होकर। घर में कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति इतना बलवान बन जाता है कि सबको अनुचित कार्य के लिए भी उसके साथ होना पड़ता है। चारों का निर्णय बिल्कुल सही था कि कृष्ण के साथ विवाह होना चाहिए, रुक्मिणी जी ने मान ही लिया था कृष्ण को ही अपना पति, यहां तक कि रुक्मिणी जी से पूछा भी गया था, महाराज भीष्मक ने पूछा कि बेटी तुम किससे विवाह करना चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है, तो उसने साफ कहा था कि मैं श्री कृष्ण से विवाह करूंगी, स्पष्ट कहा था, और भाइयों से कहा, वो सब लोग सब जगह चर्चा का विषय था कि रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती है, कृष्ण से विवाह करना चाहती, लेकिन सबका निवार्य सब मना कर दिया रुक्मिणी, और चैद्य से शिशुपाल से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इस बात को जब रुक्मिणी जी ने जाना खूब अच्छी तरह से, तद अवित असितापांगी वैदर्भी दुर्मना भृषम विचिन्ताप्तम द्विजम कंचित कृष्णाय प्राणो द्रुतम। जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला कि उनके बड़े भाई रुक्मिणी ने कृष्ण के साथ विवाह होने के प्रस्ताव को नष्ट कर दिया और शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है, तो बहुत दुखित हो गई, बहुत चिंता में पड़ गई, और उसने तुरंत एक पत्र लिखा भगवान के पास, और लिख करके एक अपने बहुत अंतरंग ब्राह्मण को दिया। आप्तम, आप्तम का अर्थ है जो बहुत सुशील और सदाचारी और बहुत निकटतम ब्राह्मण थे, तो उनको उनके हाथ में रुक्मिणी ने पत्र दिया, और कृष्णाय प्राहिरोत कृष्ण के पास भेज दिया कि ले जाओ पत्र। वह पत्र मुद्रा में था, मुद्रा का सील था उसने जो पत्र लिखा था, लेकिन रुक्मिणी ने बताया स्पष्ट कि आप जा करके भगवान से यह यह बात कहिएगा, ऐसी ऐसी बात कहिएगा, जो पत्र में लिखा था उसने कुछ बाहर भी कहा कि यह बात कहिएगा, इसलिए आप्तम ब्राह्मणम द्विजम लिखा गया है, बहुत निकट बहुत अंतरंग संबंधी ब्राह्मण को भेजा। द्वारकाम स समभ्यत प्रतिहार ही प्रवेशित, तो ये ब्राह्मण बहुत जल्दी जल्दी गए द्वारका। यहां द्रुतम शब्द आया पहले कि रुक्मिणी जी ने उनको बहुत जल्दी जाने के लिए कहा, या जो भी व्यवस्था किया हो उस समय क्या व्यवस्था होगी, पैदल ही गए होंगे जो भी हो जल्दी से जल्दी भेज जाए। तो वे गए द्वारका पहुंचे, इसके बाद द्वारपालों के द्वारा वे भीतर प्रवेश कराए गए ब्राह्मण। उसमें ब्राह्मणों के लिए कहीं अंतःपुर में भी प्रवेश वर्जित नहीं था, उस समय का समाज ऐसा था। और ब्राह्मण इतने शुद्ध चरित्र वाले होते थे और लोगों के हितैषी, वो कहीं भी आ जा सकते थे। उन ब्राह्मण ने पहले कहा होगा कि मैं द्वारकाधीश के पास आया हूँ, श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी कार्य है। तो द्वारपाल पहले गए भगवान के पास पूछे और इसके बाद आज्ञा है ठीक है आने दीजिए। तो प्रतिहारे प्रवेशित, द्वारपालों ने प्रवेश कराया तो वहां जाकर के अपश्यद आद्यम पुरुषम आसीनम कांचन आसन है। उस ब्राह्मण ने देखा भगवान को कि भगवान एक कांचन आसन है, सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। कोई विशेष कार्य में व्यग्र भगवान नहीं थे, बैठे थे। कांचन आसन, सोने के आसन पर। ब्राह्मण जब देखे भगवान को तो उनके मन में क्या है, आद्यम पुरुषम, यही आदि पुरुष जिन्होंने संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया है, जो भगवान है, वे अवतार लेकर के आए हैं। पहले से ही उस ब्राह्मण जानते थे भगवान के विषय में। तो आदि पुरुष भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ ब्राह्मण ने देखा। आदि पुरुष जो जगत के मूल कारण है, सनातन पुरुष। जब ब्राह्मण ने भगवान को देखा, जब भगवान ने ब्राह्मण को देखा तो क्या किया, दृष्ट्वा ब्रह्मण देवस्तम अवरुह्य निजासनात् उपवेश्यार्हे आंचक्रे आत्मानं यथात्मानं दिवौकसः। भगवान ब्रह्मण देव हैं, ब्राह्मणों के पुजारी हैं, भगवान ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं। तब वे उस ब्राह्मण को देख करके निजासनात् अपने आसन से खड़े हो गए। यह सम्मान है, इसको अभित्थान कहा जाता है संस्कृत में। किसी श्रेष्ठ पुरुष को देखकर आसन छोड़ देना चाहिए, यह है इस स्वागत का एक पहला नियम है, उपचार, अभ्युत्थान उसको संस्कृत में कहा गया है, अभ्युत्थान। और इसके बाद कुछ आगे बढ़ना, इसको उपव्रज्य कहते हैं, आगे बढ़ना कुछ स्वागत के लिए। पहले तो अपना आसन छोड़ देना, तो आगे बढ़ना है, इसके प्रणाम या जो भी ऐसे करना है। तो भगवान पहले अपना आसन छोड़ दिए। देखिए भगवान किस तरह से वेद के नियमों का पालन करते हैं। अपने घर में एक ब्राह्मण आए हैं तो उनका किस तरह स्वागत करना चाहिए, भगवान शिक्षा दे रहे हैं। जबकि ब्राह्मणों के इष्ट देव हैं, परम पुरुष भगवान है, परंतु इस जगत में मनुष्य की लीला कर रहे हैं कि मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान एक क्षत्रिय में अवतार लिए हैं। जो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण का इस तरह से आदर करे। भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और खड़ा होकर के इसका प्रणाम किए और उस तरह से उस ब्राह्मण का स्वागत किए, सब तरह से, जैसे देवता लोग भगवान का करते हैं। देवता लोग भगवान का स्वागत करते हैं, वैसे भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया। दिवौ का शहर, आकाश में रहने वाले शिव जी या ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र आदि, ये सब भगवान की पूजा करते हैं। जैसे देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं श्रद्धा से, उतनी श्रद्धा से भगवान ने ब्राह्मण की पूजा किया। ऐसा नहीं कि कोई केवल नाटक या अभिनय दिखा रहे हो, भगवान दूसरों को शिक्षा देने के लिए ही कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। उनके मन में आया कि मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय आवेश में रहते ही हैं भगवान द्वारका में, और ब्रज में गोप आवेश में रहते हैं। मैं एक क्षत्रिय हूं और उस पर भी बहुत माया में हूं, भगवान ये सोच रहे हैं। अरे ब्राह्मण हैं, जीवन का शाश्वत संदेश लेकर हमारे पास आए हैं, ज्ञान देंगे। भगवान उठ करके खड़े हो गए, फिर स्वागत सत्कार किए, पूजा किए। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति पाणिना भी मृसंपाद अभ्यग्रस्तम पृछत। तो सबसे पहले पूजा किए भगवान ब्राह्मण की, इसके बाद खिलाए उनको द्वारका में, अम्मा देवकी ने बनाया होगा चाहे जो भी प्रसाद बना होगा, भगवान खिलाए अपने हाथ से परसे। ऐसा नहीं कि फोन कर दिए कहीं से बना बना रेडीमेड लाओ और ये लाओ बासी सासी रेस्टोरेंट से। आजकल तो लोग ऑर्डर दे देते हैं, लाओ उधर से। सब बनाया जाता था ऊपर, ताजा ताजा सब कुछ। तो ब्राह्मण को भगवान ने खिलाया, तुम भुक्तवंतम, भगवान जानते थे कि भूखे हैं। ब्राह्मण लोग बहुत शुद्ध आहार करते हैं, ऐसा नहीं कि जहां तहां खा लें, जो चीज कोई दे दे बस खा लें बकरी की तरह, ऐसा नहीं। शरीर में भगवत प्रसाद ही जाएगा और दूसरा जा नहीं सकता, भले भूखे रह जाए दो दिन ठीक। तो खिलाया भगवान ने और इसके बाद विश्रांतम, खिलाने के बाद ऐसा नहीं कि बैठा करके तर्ण करे और बात करने लगे, छोड़ दे थके मांगे हैं विश्राम। भगवान सब जानते हैं, जानते हैं कि मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए और जल्दी जल्दी बात करनी चाहिए, क्योंकि विवाह के दिन में बहुत दिन नहीं रह गए हैं, दो दिन केवल है। लेकिन फिर भी भगवान दूसरों की परिस्थिति को समझते हैं, तो विश्राम करने के लिए सज्जा लगाया, विश्राम कर लिए ब्राह्मण थोड़े देर तक को लेटे। उसके बाद भगवान गए उनके निकट, विश्रांतम उपगम्य सताम गति, भक्तों की गति स्थान भगवान गए उस ब्राह्मण के पास और अपने कर कमल से उनके दोनों चरणों को सहलाते हुए संवाहन करते हुए उनसे इस प्रकार प्रश्न करने लगे। पादव दो वचन में है और पाणिना एक वचन में है। भगवान एक हाथ से चरण दबा रहे थे अथवा एक एक पैर एक एक हाथ से दबा रहे थे, इसका यह अर्थ है, अथवा एक हाथ से पंखा झल रहे होंगे और एक हाथ से चरण दबा रहे होंगे, जो भी हो कोई न कोई एक हाथ व्यस्त होगा भगवान का, इसलिए एक हाथ का वर्णन सुदेव गोस्वामी कर रहे हैं। एक हाथ से ब्राह्मण देव के दोनों चरण कमल को दबा रहे थे भगवान, अभी मृष्ण सहलाते हुए दबाते, थक करके आए, कितना दूर पैदल लेटर लेकर के पत्र लेकर के आए हैं तो थक गए होंगे। तो इस तरह से भगवान अद्भुत सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, घर में आए हुए ब्राह्मण का चरण संवाहन कर रहे हैं, जबकि वहां हजारों दास दासी हैं, किसी को भी कह सकते थे कि थोड़ा मसाज कर दो, किसी को भी कह सकते थे, लेकिन स्वयं अपने करकमल से उनके चरण का संवाहन करते हुए और इस प्रकार से बातचीत करने लगे। तो ब्राह्मण से ब्राह्मणोचित बात करनी चाहिए, भगवान इस विषय में बहुत प्रवीण है, किससे क्या बोलना चाहिए। तो भगवान पूछते हैं, क्वचित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत वर्तते नातिक्षण संतुष्ट मनस सदा। हे द्विजवर श्रेष्ठ, ये पहला संबोधन है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, हे उच्च कोटि के ब्राह्मण, भगवान लक्षण से समझ रहे हैं कि ये बहुत शुद्ध ब्राह्मण है। द्विज वरस श्रेष्ठ अथवा हे द्विज वर हे श्रेष्ठ, ये अलग अलग भी कह सकते, हे श्रेष्ठ हे महान और हे ब्राह्मणों में शिरोमणि। संतुष्ट मनसा सदा, मैं ऐसा अनुमान करता हूं, लक्षण से समझ रहा हूं कि आप सदा संतुष्ट रहते होंगे, अपने संतोष हमेशा बना रहता, जो कुछ भी खाने को मिल जाए, पहनने को, या संसार में जो कुछ मिल जाए, उतने में ही अलम बुद्धि आपकी होगी, आप निश्चित ही बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं। तो आपको अपने धर्म पालन में कोई कठिनाई नहीं होती है ना, जिस धर्म का आचरण आपके पूर्वजों ने किया है, पहले के लोगों ने किया है, वृद्धों ने, ज्ञानियों ने ब्राह्मण के जिस धर्म का वर्णन किया है, आचरण किया है, तो अपने धर्म पालन में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है ना। इतना तो भगवान समझ रहे हैं कि धर्म पालन करते हैं, धर्म का अर्थ है ब्राह्मण के नियम पालन करते हैं, लेकिन नियम पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है ना। कृष्ण कठिनाई के साथ धर्म का पालन तो नहीं होता है ना, कोई कठिनाई होती है क्या, ये भगवान समाचार पूछ रहे हैं। और यह इसलिए कि उनके कठिनाई को दूर करने के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसका जो धर्म है उसके पालन में सहायता करता है राजा। तो भगवान अंततः राजा पर ही पूछेंगे कि आपके राज्य में राजा आप लोगों को धर्म पालन में सहायता करता है ना, कोई कठिनाई तो आपको नहीं है ना। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है, भगवान जो वर्णन कर रहे हैं, वह है संतुष्ट मनसा। जिस ब्राह्मण में संतोष है, जो कुछ भी मिल गया उसी में उसकी अलम बुद्धि है, तो वह बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बहुत गुण है वास्तव। तो संतुष्ट मन से अपने धर्मों का पालन आप कर लेते हैं ना, कोई कठिनाई तो नहीं होती है। ब्राह्मण का धर्म मतलब वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, ये सब मुख्य कर्म है, धर्म है ब्राह्मण का, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है ना। कितना सुंदर समाचार पूछ रहे हैं भगवान एक ब्राह्मण से। संतुष्टो जर्हि वर्ते ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमान स्वधर्मा स यस्य अखिल काम ध्रुव। अब कहते हैं कि जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, जो भी मिल गया उसी में संतोष करता है, और कभी भी अपने धर्म से गिरता नहीं, डिगता नहीं है, तो वह संतोष या वह धर्म ही उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। धर्म का आचरण यदि किया जाए, अपने कर्तव्य का जो वेदों में वर्णित है, तो वह कर्तव्य का पालन ही व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। आगे जो कुछ भी उसकी इच्छा होगी पूरी हो जाती है, चाहे स्वर्ग अपवर्ग जो कुछ मिलना होता है। तो भगवान बहुत सुंदर वाक्य बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण संतोष करता है, जेन केनचित, जेन केनचित का अर्थ है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म में लिखा हुआ है, जो जगत की व्यवस्था है ईश्वर की, तो कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, रहने के लिए मिलेगा ही, और इसमें यदि कोई संतुष्ट होता है तो, और अपने धर्म से गिरता नहीं है, तो उस ब्राह्मण की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण के विषय में संतोष की भूरी भूरी प्रशंसा है। जो कुछ खाने को मिल जाए तो उसमें संतोष करे, या नहीं कि जो नहीं मिला है उसके लिए हाय हाय करे कि ये नहीं मिला, ये नहीं बना, वो नहीं बना, जो सामने है वो तो खाया जाए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है जो सामने आया उसमें संतोष नहीं करते हैं, पहनने को कुछ मिला तो सोचते नहीं ये ठीक नहीं है, खाने को मिला, घर मिला हुआ है तो जिस घर में रह रहे हैं उसमें संतोष नहीं है, दूसरे लोगों के घर को देख करके हाय हाय करते हैं, वो मिल जाता है, ये हो जाता है, तो और दूसरे लोग तो वैसे आदि भले ही बात सोचे, लेकिन ब्राह्मण को इस विषय में संतोष होना चाहिए, संतुष्ट रह करके भगवत भजन करना चाहिए, ये मतलब है। और सब बेटर बेटर मेटेरियल फैसिलिटी के लिए कोशिश करना मतलब उसे धर्म से बिगाड़ देगा, नष्ट कर देगा, जितना है उसी में वो करे। भगवत भजन में धर्म में टिके रहने चाहिए। इसमें स्वधर्मार्थ और ही माना का अर्थ है कि डिग जाना, ऐसा नहीं होता है। जिस ब्राह्मण जो धर्म नहीं छोड़ता है, अपने कर्तव्य को कर रहा है, जैसे भगवत भजन आदि कर्तव्य है, नाम जप, भगवान की पूजा वगैरह, इसको धर्म कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। धर्म पालन में संतोष का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं कि वह संतोष ही उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर देता है सब कुछ। और असंतुष्ट असकृलोकान आपनोत्यपि सुरेश्वर अकिंचनोपि संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वर। और यदि कोई व्यक्ति भले इंद्र हो जाए, स्वर्ग का राजा हो जाए, लेकिन यदि वह असंतुष्ट है, तो स्वर्ग का राजा होते हुए भी वह चक्कर काटता रहेगा, उसको सपने में सुख नहीं प्राप्त होगा। स्वर्ग मिला हुआ है लेकिन और असंतोष बढ़ गया है कि हमको ब्रह्मा का लोक मिलना चाहिए या ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो जो मिला हुआ है वो जो मिली हुई है वस्तुएं उसको सुख नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वह और दूसरे वस्तु की कामना कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुरेश्वर अपि देवताओं का ईश्वर इंद्र भी यदि असंतुष्ट है तो असकृत लोकन अपनौती, निरंतर इस आदमी के पास से दूसरे के पास तीसरे के पास ये चाहिए वो चाहिए करता रहेगा, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। और अकिंचनों की संतुष्ट, और इंद्र के ठीक विपरीत कोई अकिंचन है, किसी के पास कुछ नहीं है, परंतु यदि संतुष्ट है तो शेते सर्वांग विज्वर, उस सब प्रकार के ज्वर से शून्य होकर के, चिंता से शून्य होकर के सोता है आराम से, यदि संतुष्ट है। भले उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन संतोष है, तो वो आराम से रहेगा, सुख से रहेगा। और सब कुछ भरा पड़ा है और असंतोष है तो मरता रहेगा, जलता रहेगा। ब्राह्मणों एक ब्राह्मण के साथ भगवान ब्राह्मणों के धर्म पर डिस्कशन कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, वास्तव में वो भगवान का भजन कर ही नहीं सकता है, ये सिद्धांत है। असंतोष मन में बना हुआ है तो जिस वस्तु के लिए असंतोष है उसी वस्तु के प्राप्ति के लिए वो काम करेगा, मनोरथ करता रहेगा। भगवत भक्ति का मनोरथ तो उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा हृदय में, तो और वस्तुओं से संतोष करके तब भगवान का भजन होता है। भगवान यही बात बता रहे हैं, बहुत वस्तुओं के संग्रह से धर्म में रुचि होगी या भजन में रुचि होगी, यह बात नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्र भी यदि असंतुष्ट है तो वो सुख से नहीं रह सकता, और अकिंचन भी है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन संतोष है तो वह आनंद के साथ सोता है। सर्वांग विज्वर, विज्वर का अर्थ विगत ज्वर, ज्वर का अर्थ संताप, चिंता। उसे कहीं भी शरीर में, मन में, बुद्धि में कहीं भी चिंता नहीं रहेगी, और सुख से सोता है यदि संतोष है तो। ऐसा संतोष है तो रेलवे प्लेटफार्म पर भी सो जाएगा कि पुलिस को जगाना पड़ता है कि हटो हटो हटो, और नहीं संतोष नहीं है तो एसी रूम में भी आदमी जलता रहता है, वो यह नहीं हुआ, बाहर सब ठंडा छाया हुआ है और भीतर आग लगी हुई है, चिंता देखा जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के लिए ही यह संतोष सिखाया जा रहा है, वास्तव में उतना ही मिलेगा जितना लिखा है ललाट में, तो जितना मिले उतने में अपने को धन्य समझना चाहिए कि कृष्ण की यही व्यवस्था है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अधिक लालसा से लाल मिल नहीं पाती है वस्तु, केवल ज्वलन मात्र शेष होती है। यदि लालसा करने से, हाय हाय करने से वस्तु मिल जाती तो चलो एक अच्छा था कि भाई प्रयास किया, हाय हाय किया तो मिल गई, मिला भी नहीं और जलन हुआ एक अलग हुआ, इसे तो अच्छा है कि इच्छा ही ना की जाए। इच्छा ही न की जाए। क्योंकि यहां पर भगवान संतोष की व्याख्या कर रहे हैं और एक ब्राह्मण के साथ बैठ करके एकांत में, इसलिए इसकी व्याख्या की जा रही है। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुहृतमान निरहंकारण अशांतान नमस्ते दत् शिरसा सकृत। मैं तो ऐसे ब्राह्मणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। ऐसे कैसे ब्राह्मणों को भगवान गुण वर्णन कर रहे हैं? मैं ब्राह्मणों को सिरसा नमस्ते, सिर से नमस्कार करता हूं। सिर से नमस्कार का मतलब यह नहीं कि केवल हाथ जोड़ करके बोल दिया कुछ नमस्ते या नमस्कारो में, सिरसा का सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं अथवा उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं। कैसे ब्राह्मणों को? स्वलाभ संतुष्टान, विप्रान स्वलाभ संतुष्टान। जो विप्र वेदों के विद्वान हैं और स्वलाभ संतुष्टान, स्वलाभ का अर्थ होता है अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। स्वलाभ संतुष्टान का अर्थ है अपने आत्मा के लाभ से संतुष्ट नहीं। स्वलाभ का अर्थ है, स्व का अर्थ होता है हमारे प्रयत्न के बिना ही कोई चीज मिल जाए उसको स्वलाभ कहते हैं, उसी में जो संतुष्ट रहते हैं ऐसे ब्राह्मणों को मैं सिर से प्रणाम करता हूं। और कथम भूतन विप्रान साधुन, साधुन का अर्थ है मधुर स्वभाव वाले सज्जन चरित्रवान ब्राह्मण, और भूत सुहृतमान जो सभी जीवों के हितैषी होते हैं, सभी जीवों का हित करना चाहते हैं, भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं, सबको सुख देते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को मैं सिर से प्रणाम करता हूं। अच्छा, ऐसा गुण होते हुए भी निरहंकार, जिनमें अहंकार छू तक नहीं सकता है, जिनको यह अहंकार नहीं होता है कि मैं ऊंचे कुल का हूं, मैं धनी हूं, मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, ये हूं, वो हूं, मैं पूज्य हूं, इस प्रकार का अहंकार जिनको नहीं होता है ऐसे ब्राह्मणों को मैं सिर से प्रणाम करता हूं। शांतन, और जो शांत रहते हैं, विषय वासना शून्य रहते हैं, अथवा कम से कम इसका अर्थ होगा कि जो क्रोध नहीं करते, शांत रहते हैं। जो ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते हैं और जिन्हें भोगों की लालसा नहीं होती है, ऐसे ब्राह्मणों को मैं निरंतर सिर से प्रणाम करता हूं, असकृत है बारम्बार। ऐसा नहीं कि एक बार प्रणाम कर लिया फिर बाद में नहीं, मैं रोज रोज प्रणाम करता हूं ऐसे ब्राह्मणों को। ये भगवान बोल रहे हैं, स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुहृतमान निरहंकारण शांतान विप्रान असकृत सिरसा नमस्ते। मैं निरंतर प्रणाम करता रहता हूं। अब भगवान डायरेक्ट कुशल मंगल पूछ रहे हैं। कचिद्वाह कुशलम ब्रह्मन् राजतो जस्य हि प्रजः सुखम बसन्ति विषये पाल्यमाना समे प्रियः। हे ब्राह्मण, आप लोग जिस राजा के राज्य में हैं, जो राजा आप लोगों का पालन करता है, उस राजा के राज्य में आप लोग सुख से रहते हैं ना, आप लोगों का कुशल है ना, राजा के द्वारा तो कोई कष्ट तो नहीं होता है। भगवान इस जगत में जब अवतार लेते हैं क्षत्रिय वंश में, तो वे राजाओं को ठीक करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि राजा ठीक व्यवहार करता है ना, यदि नहीं करता होगा तो उसको ठीक किया जाएगा। आप लोगों का कुशल है ना, सरकार तो कोई दुख नहीं देती है ना, राजा के द्वारा यह व्यवस्था है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकें सही सही। ये बहुत जरूरी है, राजा जब अनुकूल रहे, वैष्णव रहे, तब वो जनता को भगवत भजन की सुविधा दे सकता है। तो कचिद वह कुशलम ब्रह्मन् राजतः जस ही प्रजा, राजा से आप लोगों का कुशल है ना।
1/6 छठा ही भजन कर रहे हैं
और दान यज्ञ तप जो कुछ भी उस सारा सबका यदि राजा के रक्षा के कारण सब भजन हो रहा है तो राजा को छठा हिस्सा मिलेगा। कितना बड़ा होगा उसका पुण्य। और यदि राजा के कारण प्रजा पाप करती है, राजा रक्षा नहीं कर पाता है, प्रजा दुराचार करती है, तो प्रजा का छठा हिस्सा राजा को भोगना पड़ेगा। कितना काल तक उस नरक में रहना पड़ेगा, सबका कर्म फल भोगते भोगते। तो एक एक आदमी का ही इतना कर्म फल होता है कि लाखों बरस नरक में रहेगा। तो एक एक आदमी का यदि मान लीजिए 15,000 काट लिया जाए वर्ष से या लाखों लाख, तो राजा को का तो कभी निस्तार ही नहीं। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रेप अवश्य नरक का अधिकारी। राजा जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है वो तो निश्चित नरक में गिरता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि जो राजा अपने राज में प्रजा का पालन ठीक से करता है, धर्म पालन की सुविधा देता है, जिलाता है खिलाता है अच्छा से, तो वह राजा मुझे बहुत प्रिय है। इतना तक तो सामान्य रूप से भगवान ने पूछा, अब डायरेक्ट उनके विषय में व्यक्तिगत पूछ रहे हैं।
जतस्त्वम आगतो दुर्गम निस्तिर्जे हजदिच्छया यदिच्छया सर्वम नो ब्रूह्य गुह्यम चेत किम कार्यम करवान ते।
भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं इसे जान गया कि आप बहुत दूर से आए हैं, आप थके मांदे हैं, तो इतने इतने देशों को पार करके और दुर्ग को कठिनाइयों को पर्वतों को पार करके जो आप यहां आए हैं, जिस इच्छा से आप आए हैं कृपया आप अपनी इच्छा बताइए। जो भी आपके मन में है, जो आपका प्रयोजन है यहां आने का, आप यदि गुह्यम न चेत, यदि छिपाने लायक बात नहीं है, गोपनीय नहीं है, तो आप हमसे सब बात कहिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। आप अवश्य कोई मनोरथ लेकर के इतने दूर से आए हुए हैं। भगवान को बहुत उत्सुकता है यह बात जानने की, और स्वाभाविक एक सुशील व्यक्ति का भगवान कर्म कर रहे, लीला कर रहे हैं। स्वाभाविक पूछते, आप इतने दूर से आए हैं तो जरूर आपका कोई मनोरथ होगा, आपका कोई कार्य है, मैं क्या करूं, आप किससे क्या सेवा करूं, किम कार्यम करवाम ते, आपका क्या करने लायक कार्य है, मैं क्या करूं, कृपया बताइए। एवं संप्रिष्ट संप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहित देहे न तस्मै सर्वम वर्णयत। इस प्रकार जब भगवान ने बहुत ही सुशीलता के साथ, नम्रता के साथ और प्रेम से ब्राह्मण से प्रश्न किया, तो ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए भगवान की बात से और वे समझ गए कि भगवान ने इसीलिए अपना लीला विग्रह प्रकट किया है, मनुष्यों का आचरण करके सिखाएंगे, तो ये सिखा रहे हैं जगत को, सर्वज्ञ होते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। तो तस्मै सर्वम वर्णयत, तो उस ब्राह्मण देवता ने भगवान के प्रति सारा वर्णन किया, सब कुछ सर्वम। रुक्मिणी ने जो जो बात कहा था, जैसे जैसे कि इस तरह से मेरे विवाह का निषेध कर दिए हैं, आप कह देना कि वे ऐसे आएंगे और इस तरह से मेरा हरण करके मुझे ले चलेंगे द्वारका, तो सारा ब्राह्मण ने कहा और अपनी ओर से कहा ये पत्र पढ़ने के बाद कि यह संदेश है रुक्मिणी का और जो उचित हो वो शीघ्र कीजिए, अपनी ओर से ब्राह्मण ने कहा। उसने सोचा कि शायद भगवान देर कर सकते हैं, उधर रुक्मिणी प्राण त्याग भी कर सकती है, इसीलिए ब्राह्मण ने अपनी ओर से कहा कि जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए। तो जब यह कहा उन्होंने तो इसके बाद भगवान को पत्र दिया कि रुक्मिणी ने यह आपके लिए पत्र दिया है, भगवान ने देखा कि पत्र बिल्कुल सील्ड है, तो उसकी मुद्रा को भगवान ने स्वयं खोला ब्राह्मण के सामने, और खोल करके ब्राह्मण को ही दिया पढ़ने के लिए कि आप पढ़िए। यह भी भगवान की एक बहुत बड़ी उदारता है, किसी को अपना बनाने की एक कला है भगवान के पास, एक उपाय है। ये ब्राह्मण अंतरंग बनकर आए थे रुक्मिणी जी का, तो ब्राह्मण के साथ भगवान कोई दुराव नहीं करना चाहते थे। ये ब्राह्मण ना सोचे कि पता नहीं पत्र में उसने क्या लिखा, और इन दोनों में क्या बात हो रही है हमको पता ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने डायरेक्ट कहा ठीक आप पढ़िए, भगवान उस पत्र को खोले और ब्राह्मण को दिए कि आप पढ़िए, तो ब्राह्मण पढ़ने लगे। इसलिए ब्राह्मण ने कहा रुक्मिणी उवाच, यहां तक ब्राह्मण का वचन है, रुक्मिणी उवाच ये रुक्मिणी का वचन नहीं है। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था हे परम सुंदर, हे भुवन सुंदर, जो संबोधन किया था, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर संबोधन किया था, बीच बीच में संबोधन करते हुए पत्र लिखा। रुक्मिणी जी के पत्र के 7 श्लोक हैं, और विद्वानों का ऐसा कहना है कि यह यथावत 7 श्लोक रख दिए गए। इसमें सुखदेव गोस्वामी ने कोई मिटाया नहीं है, ना अपनी ओर से कोई जोड़ा है। रुक्मिणी जी का पत्र जो कहते हैं, जैसे भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ है, ज्यो का त्यो उपदेश रखा गया है, वेदव्यास देव ने उसमें कोई चेंज नहीं किया। श्री भगवान वाच कहकर जो भी श्लोक है, श्री भगवान वाच ये तो वेदव्यास देव का है, लेकिन जो उसके आज बोले हैं वो भगवान का वाक्य है श्री कृष्ण का। इसी तरह से रुक्मिणी वाच यहां तक ब्राह्मण का वाक्य है, और अब इसके बाद रुक्मिणी के पत्र को ये ब्राह्मण पढ़ेंगे। यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या की आवश्यकता है, हमको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रिय लगता है किस तरह से रुक्मिणी जी समर्पण कर रही है भगवान को। और अद्भुत बात है कि वे स्वयं ही उपाय बता रही हैं कृष्ण को कि आप ऐसे आइएगा, गांव के इस तरफ गिरजा जी का मंदिर है उधर आइएगा, उस दिन मैं जाऊंगी शोभा यात्रा में, वहीं से मेरा हरण कीजिए। इस तरह से सारी बातें बता रही हैं। इनको चिंता है कि यदि मैं घर में रहूंगी और घर में यदि जादव आक्रमण करेंगे तो हमारे बंधु बांधव या और लोग विरोध करेंगे, तो उसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है, बहुत हत्या हो जाएगी। इसलिए सोचती है कि कोई खून खराबी भी न हो और बाहर से भगवान मुझे ले जाए। वो पत्र में लिखी है एक एक बात, क्षत्रिय की कन्या है इसलिए पॉलिटिक्स में बहुत आगे है। बहुत सोच समझ करके लिखी है। हरे कृष्ण।